समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई और सुहावनी सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे लेकर। आज तारीख की बात करें तो 2 अगस्त है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मॉनसून की बारिश की बहुत चर्चाएं इस समय हो रही हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आप जहां से भी सुन रहे हैं आपको मॉनसून अच्छे से भिगो रहा है और सावन की रिमझिम फुहारों ने गर्मी के प्रभाव को भी कम कर दिया है। आज के संघ के साथ मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार देवेंद्र। हेलो लिसनर्स, वेलकम टू आवर सैटरडे मॉर्निंग एडिशन ऑफ आज सवेरे। सो गेट सेट, गेट फोकस्ड एज वी स्टार्ट दिस सेशन विद सम न्यूज हेडलाइंस।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। ये किसानों के लिए सुभद्रा एक बड़ी खबर होती है कि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करते हैं। सम्मान निधि के अंतर्गत देश भर के 9,70,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। वे 2,200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में, जो कि उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भीड़भाड़ वाले 73 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन अधीक्षक की तैनाती की जाएगी, जो त्योहारों के दौरान स्टेशन पर भीड़भाड़ कम करने के लिए तत्काल निर्णय ले सकेंगे। राज्यसभा में कल श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के बाहर स्थायी होल्डिंग एरिया और चौड़े फुट ओवर ब्रिज बनाकर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी, वॉकी टॉकी उद्घोषणा प्रणाली और वॉर रूम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल कंफर्म टिकट धारकों को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। और सुभद्रा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई बार भीड़ ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा प्रबंधन अगर ठीक नहीं है तो भगदड़ मचती है और इसके कारण कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसको प्रबंधन करने में जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर रहना होगा और अवेयर करना होगा।
The External Affairs Ministry has said the sourcing of India's defense requirements is determined solely by country's national security imperatives and strategic assessments. The ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this while briefing media in New Delhi last evening in reply to a query on defense procurements. On energy sourcing, the spokesperson asserted that New Delhi is guided by what is on offer in the markets and by the prevailing global circumstances.
On our energy sourcing requirements, you are aware of our broad approach that we look at what is there available in the markets, what is there on offer, and also what is the prevailing global situation or circumstances. Now, on the specific question, I am not aware of the specifics that you mentioned.
Responding to a query on India-Russia ties, the spokesperson said, bilateral relationships with various countries stand on their own merit and should not be seen from the prism of a third country. He stressed that India and Russia have a steady and time-tested partnership. Mr. Jaiswal emphasized that India and the US share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. He said the India-US partnership has weathered several transitions and challenges.
India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward.
निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत तैयार प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूची से हटाए गए या छूटे पात्र मतदाता पहली सितंबर तक अपना नाम सूची में शामिल करने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। तो बिहार से अगर आप संबंध रखते हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आपका नाम इस सूची में जो कल प्रकाशित हुई है उसमें नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर ये जो अवसर है एक महीने का, उसका लाभ उठाएं और अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए जो भी तरीके चुनाव आयोग द्वारा बताए गए हैं उनको जरूर अपनाएं।
Hindi movie 12th Fail has bagged the Best Film Award at the 71st National Film Awards. Announcing the awards in New Delhi last evening, Chairman of Jury Feature Film Ashutosh Gavrikar said, Bollywood actor Shah Rukh Khan clinched his maiden national award for his performance in the action film Jawan. He shared the Best Actor Award with Vikrant Massey for his performance in the hit biopic 12th Fail. Rani Mukherjee was adjudged the Best Actress for her efforts in the emotional drama Mrs. Chatterjee vs. Norway. Chairman of Jury Non-Feature Film P. Sheshadri said, Flowering Man, directed by Soumyajit Ghosh Dastidar, has bagged the Best Non-Featured Film Award. Piyush Thakur has got the Best Direction Award. Mr. Sheshadri said, God, Vulture and Human has got award for Best Documentary. We have a report from our doc correspondent.
Rai Bareli mein tu beech bazari jab husn dikhane jayegi Hosh udane wali shokh nazar ke jo pech ladane jayegi
हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बैग द अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट व्हाइल सैम बहादुर वाज नेम्ड बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज
बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज गोज टू द हिंदी फिल्म सैम बहादुर फॉर इट्स स्टरिंग ट्रिब्यूट टू करेज इंटेग्रिटी एंड पेट्रियोटिज्म थ्रू द लाइफ ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ प्रोड्यूसर इज यूनिलेजर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर मेघना गुलजार
बेस्ट म्यूजिक Direction Award has been given to G.B. Prakash Kumar for his work in Tamil film Vati. Shilpa Rao and P.V.N.S. Rohit have bagged the awards for Best Playback Singers for songs in Hindi film Jawan and Telugu film Baby. Malayalam film Pookalam has been selected for Best Editing Award. Marathi film Naal 2 has been given the award for Best Children's Film, while the Kerala Story has won the Best Cinematography Award. Utpal Dutt has been selected as the Best Film Critic. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
Oradala kadala tande, inda taridala manasukkul vande. Oradala kadala tande, inda
taridala. Aur अन्य खबरों की तरफ बढ़ें तो सिक्किम में केंद्र सरकार की भारत रणभूमि दर्शन योजना के अंतर्गत चो ला और डोकलाम क्षेत्रों को घरेलू पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। डोकलाम, चोला और नाथुला राज्य के युद्ध क्षेत्र पर्यटन सर्किट के लिए चिन्हित स्थलों में शामिल है। नाथुला पहले से ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन अन्य स्थानों को सेना और संबंधित एजेंसियों के परामर्श से विकसित किया जा रहा है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 8 साल के गतिरोध के बाद डोकलाम को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ये लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजधानी गैंगटोक से लगभग 70 किलोमीटर दूर है।
And friends, now let's go over to sports roundup.
The Indian women wrestlers have showcased their dominance on the world stage, securing a total of 6 medals, including 2 gold, 3 silver and 1 bronze to bring glory to the nation in the 2025 Under-17 World Wrestling Championship at Athens, Greece. Rachna claimed gold in the 43 kg category and Ashwini Vishnoi claimed the yellow medal in the 65 kg category. Moni in 57 kg, Kajal in 73 kg and Yashita in 61 kg each won silver, while Komal Verma earned a bronze in the 49 kg category. The Indian women's wrestling team clinched the champions trophy with 151 points. Meanwhile, male wrestler Hardeep made history by winning a gold medal in the Greco-Roman style in 110 kg category, becoming the first Indian to win the yellow medal in the heavyweight category in this style. On to cricket. India will resume their second innings play at the overnight score of 75-2 against hosts England on day 3 of the 5th and final test of Anderson Tendulkar Trophy at the Oval in London today. The match will begin at 3:30 p.m. Indian Standard Time. India are looking to level the series, which they are trailing 1-2. In badminton, Indian star shuttlers are set to compete for a spot in the finals of the Macau Open today. India's Lakshya Sen will be up against 5th seed Alvi Farhan of Indonesia, while Tarun Manepalli will take on Malaysia's Justin Ho in the semi-finals. With Sanyukta's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
तो ये थी खबरें खेल जगत से और देश और दुनिया की तमाम खबरें। और न्यूज मैगजीन आज सवेरे में आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं महानगरों की ओर। तो सुभद्रा, श्रोताओं को बताएं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं आपके पास।
यस देवेंद्र, वी आर स्टार्टिंग द न्यूज विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई।
जी,
Tamil Nadu has launched a state policy for transgenders to ensure their rights to education, employment, healthcare, housing and safety. The state will also take steps to amend Hindu Succession Act and India Succession Act to ensure right of inheritance for transgenders. The police says transgenders will be treated as socially and educationally disadvantaged and would be given preference in housing schemes. Steps would be taken to amend the Juvenile Justice Act and other relevant acts to address concerns of gender non-confirming persons. The state will operate a round-the-clock helpline for gender-related queries. We have another news from Chennai. The Meenambakkam RTO cracked down on illegal self-drive car rentals following protests by licensed taxi operators. Acting on orders from the Joint Transport Commissioner, officials inspected vehicles seized at Pallavaram police station and found several operating without valid commercial permits. Zone Cars, a rental agency operating in multiple cities, was served notice for unauthorized operations and facilitating illegal rentals. The RTO warned of strict action against such violations under the Motor Vehicles Act. Bengaluru News Now. The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Chief Commissioner Maheshwar Rao has directed officials to formulate an action plan for an additional 75 junctions under the Suraksha project. This will be in addition to the 75 locations already underway. The objective of the Suraksha 75 project is to create a safer and more efficient traffic environment for pedestrians by redesigning busy junctions and reducing congestion. Inspecting the project work from Kamakshipalya on Magadi Main Road to the Sumanahalli Electric Crematorium, Maheshwar Rao noted that the development work at the Sumanahalli Junction will be expedited. He informed that under the Suraksha project at the Sumanahalli Junction, pedestrian crossings, construction of islands, installation of bus bays and other infrastructure improvements will be done to facilitate smooth pedestrian movement. Getting to Hyderabad now. The International Institute of Information Technology Hyderabad, that is IIITH, through its technology innovation hub, iHub Data, has launched a 24-week hands-on beacon training program in artificial intelligence and machine learning, AIML, supported by the Department of Science and Technology, DST, Government of India. The program is open to bona fide students currently enrolled in four-year BTech courses at All India Council for Technical Education, AICTC, TE, approved colleges in and around Hyderabad. Sessions will be conducted every Sunday at the IIITH campus in Gachibowli starting from next month. A release stated that the program is designed to blend theory with practical application, and the course includes lectures, tutorials and project-based learning to help students build both foundational knowledge and real-world problem-solving skills in AIML. And Devendra, what about news from other cities?
Ji, Delhi ki khabrein sabse pehle. Delhi ke mukhyamantri Rekha Gupta ne vyapak swachhata abhiyan Delhi ko koode se azadi ki kal shuruaat ki. Mukhyamantri ne is avsar par kaha ki vidhayakon, parshadon aur sarkari karmachariyon sahit Delhi sarkar ka har vibhag is abhiyan mein sakriya roop se bhag lega. मुख्यमंत्री कश्मीरी गेट बस अड्डे में स्वच्छता अभियान में शामिल हुई श्रीमती रेखा गुप्ता ने स्थानीय लोगों से सुझाव लिए और अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जर्जर हो चुके सरकारी कार्यालयों का पुनरुद्धार का कार्य जल्द शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को आधुनिक और एकीकृत सचिवालय मिलेगा जिसमें सभी विभाग एक छत के नीचे होंगे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद द्वारा कल आयोजित ग्रोथ भी ग्रीन भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी बस्ती बिना घर दिए नहीं हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार झुग्गी वासियों को रोजगार देगी और कौशल देगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसके लिए अगर नीति बदलने की जरूरत पड़ी तो सरकार नीति में भी बदलाव करेगी। दिल्ली पुस्तक मेला 2025 में पहली बार दिल्ली सरकार का एकीकृत स्टॉल लगेगा। ये निर्णय दिल्ली पुस्तक मेला 2025 की समीक्षा बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने की। बैठक का उद्देश्य कला, संस्कृति और भाषा विभाग, भाषा अकादमियों द्वारा मेले में समन्वित सहभागिता, प्रस्तुति और दिल्ली सरकार के तत्वावधान में कार्यरत अकादमियों की विविधताओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की रणनीति तय करना था। श्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली केवल एक प्रिंटिंग हब नहीं है, बल्कि विचारों, भाषाओं और संस्कृति के आदान प्रदान का एक केंद्र है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक मेला हमारी सांस्कृतिक चेतना को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली सरकार नैतिक मूल्यों, यात्री सेवाओं को बेहतर करने और सुरक्षित ड्राइविंग आदि पर DTC के ड्राइवरों और बस कंडक्टरों को जल्द ही प्रशिक्षण देगी। इस पहल का उद्देश्य चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। दिल्ली नगर निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देय संपत्ति कर पर 10% छूट की समय सीमा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। ये निर्णय करदाताओं की सुविधा, कर आधार को व्यापक बनाने और राजस्व संग्रहण में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। और अब चलते हैं मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को घोषणा की कि बंबई उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच 18 अगस्त 2025 से कोल्हापुर में चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बेंच 6 जिलों कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को सेवाएं प्रदान करेगी। राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इसे संभव बनाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे का आभार व्यक्त किया। महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रीय परिवहन निगम MSRTC जल्द ही खुदरा ईंधन कारोबार में प्रवेश करेगा और केंद्रीय तेल कंपनियों के साथ साझेदारी में राज्य भर में पेट्रोल और डीजल पंप स्थापित करेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सड़क किनारे MSRTC के स्वामित्व वाली भूमि पर ये पंप स्थापित किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य वित्तीय संकट से जूझ रहे निगम के लिए वैकल्पिक राजस्व अर्जित करना है। एक और खबर महाराष्ट्र से जो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कृषि और संपर्क मार्गों को मजबूत बनाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। 23 सदस्यीय समिति में ग्रामीण विकास, रोजगार गारंटी, वित्त, कृषि और पुनर्वास जैसे प्रमुख विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समिति का उद्देश्य कृषि उपज के परिवहन को आसान बनाना और कृषि में मशीनीकरण को प्रोत्साहित करना। समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये निर्णय राज्य विधानमंडल के हालिया मॉनसून सत्र में हुई चर्चा के बाद लिया गया है। और मुंबई विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। छात्र UGC और AICTE द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए mucdoeadm.samarth.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चलते हैं कोलकाता। मत्स्य पालन और पशुपालन योजनाओं के कार्यान्वयन पर आज कोलकाता के होटल नोवेटेल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास तथा अन्य योजनाओं के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और मत्स्य पालन एवं पशुपालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन उपस्थित रहेंगे। तो महानगरों की खबरें हमने सुन ली और अब आइए जान लेते हैं महानगरों में मौसम कैसा रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही है। आज भी संभावना आंशिक रूप से बादल छाने और गरज के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तापमान 27 और 30 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में भी बादल छाने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है क्योंकि मॉनसून कोलकाता में भी सक्रिय है और तापमान यहां पर 32 और 27 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुभद्रा, बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहेगा?
I feel I need an umbrella right now, you know, with this noise.
सभी जगह बरसात.
Inside the studio. Right. Yes, Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and the maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is also expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 29.2 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 25 and a maximum of 32 degrees Celsius.
और अब इतिहास की बारी. इतिहास में आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र आइए करते हैं.
Yes, I'm starting going to the year 1776. 2nd August marks the formal signing of the United States Declaration of Independence, a pivotal moment in American history.
जी, और नीदरलैंड की सेना ने 1831 में 10 दिनों के अभियान के बाद बेल्जियम पर कब्जा किया था आज के दिन. और इसी दिन 1858 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही के हाथ में चला गया. भारत में ब्रिटिश सरकार के शीर्ष प्रतिनिधि के रूप में वायसराय का ओहदा बनाया गया.
1870 दिस डे टार सबवे द वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्यूब रेलवे ओपन्ड इन लंदन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम. And 1873, the Clay Street Hill Railroad begins operating the first cable car in San Francisco's famous cable car system. And 1880, Greenwich Mean Time, GMT, was adopted officially by the UK Parliament. And
चीन में 1922 में समुद्री तूफान टाइफून से लगभग 60,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी. और सुभद्रा, ये वो दौर थे जब समुद्र में आने वाले उड़िया समुद्र से उठने वाले तूफानों के बारे में पूर्वानुमान लगाना थोड़ा कठिन था. अब
yes,
चीजें थोड़ा आसान हुई
है,
इसलिए इस तरह की आपदाओं से हम बच पा रहे हैं.
yes, and,
जी 1932 में आज ही के दिन कार्ल डी एडिसन द्वारा पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के एक कण की खोज की गई थी. ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित कर बर्मा और अदन को भारत से अलग किया था. और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1939 में परमाणु हथियार अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा था.
1962, म्यूजिक लेजेंड पोएट लॉरेट बॉब डिलन ऑफिशियली चेंजेस हिज नेम लीगली सेइंग गुडबाय टू हिज बर्थ नेम दैट इज रॉबर्ट एलन ज़िमरमैन. एंड 1970, मिसेस चुनीरा बेलियप्पा मुथम्मा फ्रॉम कर्नाटका बिकेम द फर्स्ट वुमन एम्बेसडर ऑफ इंडिया हु टुक चार्ज इन हंगरी एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया. एंड 1990, इराक इन्वेडेड कुवैत इंस्टिगेटिंग द गल्फ वॉर.
जी, और 1987 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने फिलीपींस में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में खिताबी विजय हासिल की थी. और ये जीत हासिल करने वाले वो पहले एशियाई शतरंज खिलाड़ी बने थे. और हाल के दिनों में शतरंज में भारत के तमाम खिलाड़ी अपना
मेकिंग अस प्राउड. यस
यस जी. और अब हम उन महान लोगों को याद करते हैं जिनके कार्यों विचारों ने हमें प्रभावित किया और प्रेरित किया. और दशकों तक या सदियों तक कह सकते हैं कि वो उनके कार्य हमें प्रेरित करते रहेंगे. भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज की आज पुण्यतिथि है. आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती है. संभाल परिवार, मिल कॉल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजात व रविन्द्रनाथ टैगोर का आवक्ष पोर्ट्रेट आदि उनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं. अपने दृढ़ संकल्पों से वो भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने. भारतीय कला के लिए उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया.
स्कॉटिश अमेरिकन इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल लेफ्ट द वर्ल्ड दिस डे एट द एज ऑफ 75. It's interesting to note that, friends, that some events in his life inspired him to invent this wonderful communication device that we can't live without. Yes, Devendra, can you live without your phone, telephone?
बिल्कुल, आज के समय में तो
yes, of
भी
course,
मुश्किल है.
Yes. His grandfather had published a book titled The Practical Elocutionist and Stammering and Other Impediments of Speech. His father had researched on the methods of vocal communication while his mother was deaf. So this led Bell to become an instructor at the Boston School for Deaf Mutes. This background set his course in developing the transmission of voice over wires. So he co-founded Bell Telephone Company in 1877.
जी, जाने माने भारतीय रसायन विज्ञानी, चिकित्सक और देश प्रेमी चुन्नीलाल बसु का भी हम स्मरण कर रहे हैं. उन्होंने ग्रामीण बंगाल में स्वच्छता और स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया. अनेक दृष्टियों से वे अपने समय से आगे थे. उस समय वे खाद्य पदार्थों में मिलावट और पर्यावरण के प्रदूषण की बात करते थे. 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में वे संतुलित भोजन और व्यायाम के महत्व पर प्रकाश डालते थे। उन्होंने कहा था कि हमारा वर्तमान भोजन सही नहीं है। और सुभद्रा, हम कल्पना कर सकते हैं कि जब आज से 100 साल पहले अगर कोई इस तरह की बात करता रहा होगा तो लोग उसको क्या समझते होंगे, क्योंकि उस समय चीजें इतनी असामान्य नहीं थी जितनी आज हैं।
Yes.
और जितनी आवश्यकता आज हमें
खान पान, learning then, you know,
आज के समय हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आज के दिन चुन्नीलाल बसु का निधन हुआ था 1930 में, उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं।
1997, remembering Fela Kuti, Nigerian musician activist who launched a modern style of music called Afrobeat, which fused American blues, jazz and funk with traditional Yoruba music. Fela went to London to study medicine, but then changed his mind and chose music. He studied at the Trinity College of Music for trumpet lessons and composition and started recording. Fela used music as a weapon to speak against political and social injustices in Nigeria and across the world. He left the world this day at the age of 58 in 1997. A very successful old-time singer, Cilla Black from Liverpool, England, went away this day at the age of 73. Cilla's original name was Priscilla Maria Veronica White, who started out in the 60s as a singer, but soon reinvented herself as a good TV host in the 80s.
Now it looks as though they're here to stay. Yesterday, suddenly, I'm not half the girl I used to be.
भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का भी हम स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। सादगी पसंद और देशभक्त वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय ने रसायन प्रौद्योगिकी में देश के स्वावलंबन के लिए अप्रतिम प्रयास किए। प्रफुल्ल चंद्र राय की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उनकी आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बंगाली केमिस्ट के प्रकाशित होने पर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए लिपिबद्ध करने के लिए संभवतः प्रफुल्ल चंद्र राय से अधिक विशिष्ट जीवन चरित्र किसी और का हो ही नहीं सकता। शोध संबंधी जर्नलों में राय के लगभग 200 पर्चे प्रकाशित हुए।
Birth anniversary of drummer singer Jim Capaldi, real name was Nicola James Capaldi. He co-founded the progressive rock band Traffic in 1967 with Steve Winwood, with whom he co-wrote the majority of the band's material. Sadly, he passed away due to stomach cancer at the age of 60. Here's this track is called Dear Mr. Fantasy. And friends, Lee Mavers, British singer-songwriter from Liverpool, England, celebrates his birthday today. Of course, he was associated with the band The Lars. Global smash, There She Goes.
किसी भी देश की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि के आधार पर होती है। आज भी जब हम भारत और आजादी के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन में तिरंगे का ख्याल आता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया का आज जन्मदिन है या जयंती है। आज के दिन यानी 2 अगस्त 1878 को इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश भारत के भाटला पेनु मारू मद्रास प्रेसिडेंसी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उन्होंने साउथ अफ्रीका जाकर दूसरे बोअर युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक के रूप में भूमिका अदा की। पट्टी वेंकैया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कंबोडिया कपास में रिसर्च की थी। उन्हें समर्पित और तिरंगे को समर्पित ये गीत।
तारों को माथे पे माटी सजा के चले माए चलते रहे।
और श्रोताओं, इस सुंदर और देश के राष्ट्र ध्वज को समर्पित गीत के साथ ही अब आपसे चाहेंगे आज सवेरे कार्यक्रम में ही विदा लेने की अनुमति, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।